कमल मंजरी के नाम से दिया है, जो की भक्ति गंगा के भगीरथ के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एकांत प्रिय परिकर के रूप में, जो की गौर धाम गौर काम और गौर नाम को प्रकाश करने वाले श्री नाम भक्त के झाड़ीदार रूप में अपने को परिचय प्रदान करने वाले श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के आज आविर्भाव तिथि है, जो कि इस विश्व जगत में भक्ति गंगा के भगीरथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसे भगीरथ जी ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर भुवन पावनी गंगा जी को संसार में प्रवाहित करके सिद्ध कर दिया, जो कि आज तक कुछ भुवन पावनी गंगा के स्पर्श से सभी पवित्र होते, इस प्रकार अखंड काल आवाहमान काल तक प्रवाहित होने वाले भक्ति रस गंगा को प्रवाहित करने वाले श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की महान कृति थे, जिन्होंने इस प्रकार गौड़ीय गजन में कभी कभी कोई काले बादल जैसे आ गए हों, या कोई ब्रिटिश शासन के कारण भारत के अंदर जहां मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन से काला युग आ गया, लोग धर्म कर्म से वंचित होते चले गए और जितने भी अपसंप्रदाय चारों ओर से और बाउल करता भजा नेगा सर्वेशाही अतिवारी चूड़ाधारी गौरा के नागरी इत्यादि प्रकार के सहलिया इत्यादि संप्रदाय जब छा गए और वैष्णव धर्म में मलिनता आ गई, ऐसे समय में श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी जो श्री विश्वानंदिनी राधा जी के अंतरंग जन हैं, इस प्रकार गौर शक्ति स्वरूप आय श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विशेष शक्ति को प्राप्त करने वाले ऐसे जो उस विशेष कृपा शक्ति के स्वरूप श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जगत में उन्होंने गौर धाम गौर नाम गौर काम को प्रकाशित किया, इसलिए वे स्वयं पहले गांव गांव में शहर में सर्वत्र जैसे क्लास कमेटी बनते हैं उसी तरह से उन्होंने नाम हट्ट बसाए हैं कि सभी लोग मिल करके कीर्तन करें और स्वयं नाम हट्ट के झाड़ूदार बन करके बोले कि श्री सुरभि कुंज के नाम घाट खुले छे खोद लीता है। नित्यानंद प्रभु जी ने सुरभि कुंज गद्रू में नाम का घाट खोल दिया है, बाजार खोल दिया है, तो उस बाजार में श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धालु जन आप लोग केवल श्रद्धा मात्र देखने से ही प्रेम देने के हैं और कोई चीज की आवश्यकता नहीं, इसलिए इस नाम हट्ट के बाजार में आ करके आप लोग इस हरिनाम को खरीदे और सभी लोग इस नाम का कीर्तन करें। तो जन जन में घर घर में गांव गांव में सर्वत्र इस प्रकार हरिनाम का प्रचार किया। दूसरी बात, जो कि दुर्मूल्य दुष्प्राप्त ग्रंथ समूह विलुप्त होता जा रहा था, जैसे चैतन्य चैतामृत आदि ग्रंथ भी विलुप्त होते जा रहे थे, बड़ा ही दुष्प्राप्त था। श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों को उन्होंने संग्रह करके सर्वत्र सभा में जा करके प्रवचन दिया करते थे और उन्होंने साथ ही साथ श्री चैतन्य चैतामृत के अमृत प्रवाह भाष्य लिख करके श्री चैतन्य चैतामृत को प्रकाश कर डाला। इसी प्रकार और भी जितने ग्रंथ हैं, उन्होंने अपने जीवन में श्री गुरु जी ने कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में सभी भाषाओं में 400 ग्रंथ लिख डाले, उनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई है, जो कि अभी वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर भी कुछ ग्रंथ जो मिलते हैं उन ग्रंथों में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के एक स्वतंत्र विचार शैली प्रकटित हुआ है, वह है कि अमनाय दशमूल तत्व। अब श्री जीव गोस्वामी पाद ने गौड़ीय सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए अचिंत्य भेदावेद सिद्धांत पर उन्होंने कहा एकमेव परमं तत्त्वं स्वाभाविक चिंता शक्तिया सर्वदैव स्वरूप तत्व जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा वृष्टते एक ही परम तत्व स्वयं सूर्य, सूर्य का मंडल जैसे और उसके बाहर किरणें और प्रतिक्षण छाया के रूप में, इसी प्रकार चारों अंगांगी रूप में सन्निहित हैं, सन्मिलित हैं। इसी प्रकार स्वयं रूप कृष्ण अवतार समूह और सर्व वैभव जीव और प्रधान ये चारों तत्व अंगांगी रूप से नष्ट हैं, अतः ये दूसरों को छोड़ करके नहीं, इसलिए यह अचिंत स्तम दुर्घटस्तम जो कि अचिंत मेधावे से काम करें। बलदेव विद्याभूषण पाद गोविंद भाषण में उन्होंने पांच सिद्धांत को निरूपण किया। ईश्वर जीव काल कर्म और प्रकृति इन पांचों पर विवेचन किया है और पांचों पर सारे विचारों को विश्लेषण करके दिखाया। इसी प्रकार सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने विचारों की स्वतंत्रता पर स्वाधीनता पर कायम रखते हुए उन्होंने दस मूल तत्व का निरूपण किया है जो कि अन्नाय प्राण तत्व हरिमी परम सर्व शक्ति तद्भिनांशांश जीवन प्रकृति कवलीतां तद्भिन मुक्तांश भाव भेदाभेद शतमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रतिमेवेत्तु उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं स। जो कि श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अंधार प्राह गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त वेद वाक्य शास्त्र समूह हमारा मूल प्रमाण है। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर जो कि शास्त्र जोनित्व और शास्त्र ही मूल शब्द मूलाम ही प्रमाणम शब्द को ही उन्होंने मूल प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, वह भी गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इधर उधर से पानी बहता हुआ गंदे पानी में वो गंदा हो चुका है। ऐसे कलुषित विचारों को हम नहीं लेते हैं, शुद्ध विचारों को ग्रहण करते हैं। उन विचारों के द्वारा नौ तत्वों को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया जो कि हरि ही परम तत्व है। भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है, वे अखिल रस के समुद्र है, जीव समूह उनके विभिन्नांश तत्व हैं, जो कि तटस्थ शक्ति के अंश हैं, प्रकाश हैं, और वे जीव एक प्रकार के मुक्त हैं, दूसरे प्रकार के बद्ध हैं, दो प्रकार के जीव बताए गए हैं, और भगवान ही सारे विश्व जगत को स्वयं ही स्वयं से स्वयं के द्वारा स्वयं में स्वयं से ही अपने लिए प्रकट किया है। अतः भगवान ही सारे विश्व संसार के रूप में है, परंतु भगवान इव इतरो भगवान ही है, परंतु इतर भगवान से पृथक है। इसलिए अचिंत भेदावेद भेदाभेद परम सकलम अपि हरि सारे संसार का परिणाम है, जो कि एक दिन उत्पन्न होता है, एक दिन स्थिति, इसके बाद विनाश होता है, परंतु भगवान की जन्म स्थिति और भंग ये तीनों चीजें नहीं है। इसलिए भेद और अभेद दोनों ही तत्वों में जगत को दिखाया गया है और भक्ति ही एकमात्र साधन है जो कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। यथा यथात्मा परिमेज्यति असौ मत्पुंज गाथा श्रवणाभिधान, जितने परिमाण में भगवान की कथाओं को सुनी जाती है उनकी कथाओं को सुनते सुनते जितने परिमाण में हृदय परिमार्जित होता है उतने परिमाण में ही सुख वस्तु का अनुभव होता है। नहीं तो बहिर्दृष्टि जड़ दृष्टि से क्या होता है, बाहरी भाव को ले लेते हैं पर अंतर्भाव को समझ नहीं सकते। अतः जितना जितना हृदय परिमार्जित होगा उतने परिमाण में सुख वस्तु का अनुभव होता जाए। इसलिए कहते हैं साधनम शुद्ध भक्ति, भक्ति ही एकमात्र साधन है और विमल प्रेम की प्राप्ति ही एकमात्र जीवन का साध्य है, हमारा प्रयोजन है। इसलिए उन स्मरण करते हुए श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका निरूपण किया। उनके देव धर्म को लिखिए, उनके दशमुख तत्व को लिखिए, चैतन्य शिष्यामृत को लिया जाए, जितना भी ग्रंथ लेंगे श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा ली जाए, जो कोई ग्रंथ लिया जाएगा सभी ग्रंथों में उन्होंने दस मूल रसायन को प्रवेश कराए हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना विचार वैशिष्ट को व्यक्त किया है। इसी कारण से इतने संत पुरुष आए हुए हैं, फिर भी छह गोस्वामियों के पश्चात उन्हीं को सप्तम गोस्वामी के रूप में प्रधानता दी गई, जो कि इतने बड़े कार्य को करके उन्होंने दिखाया है। इसी प्रकार मायापुर धाम को उन्होंने प्रकाशित किया, गौर धाम, गौर नाम, गौर काम को कहने वाले, जो कि श्री महाप्रभु जी के तथा विश्वभानंद श्री राधा जी के अंतरंग जन शिव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनके अभूतपूर्व कार्य शैली है और इस प्रकार सेवा के एक महान मूर्त विग्रह श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में आज हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उनके चरणों में हम श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। हम सब पर वे अहित की करुणा प्रदर्शन करें। साथ ही सभी वैष्णवों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, जो कि हमारे भूल त्रुटि के लिए आप सभी लोग हमें क्षमा करेंगे। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए और कोई भी कुछ हो जाए तो उसके लिए आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी।
You can speak some translation and some
of Srila Rupa Goswami Pad was blocked. The Vichadhara, the current of Rupa Goswami Pad's conception, has been compared to the Ganges. But the flow of this Rupanuga Vichadhara was blocked. So Srila Bhaktivinoda Thakur has been compared to the Bhagirath Muni, who caused the flow of the Ganges from the higher planets onto this planet. In the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur reinitiated the very powerful current of Rupanuga Bhajan in the modern age. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur has been called Saptam Goswami, the seventh Goswami. Why? Because Sri Chaitanya Mahaprabhu entrusted the six Goswamis with a mission to perform. First of all, Lupta Tirtha Udhara, to uncover the lost holy places. Secondly, Vibraha Prakash, to manifest the transcendental vibraha, Bhakti Grantha Pranayam, to compose the books clarifying and explaining the essence of pure bhakti, and Vaishnav Sajata Sadachar's Tapana to establish what is the appropriate behavior for Vaishnavas in various stages of life. So, as six Goswamis, they carried this mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu here in Vrindavan. So Srila Bhaktivinoda Thakur did the same mission in Navadvip Dham and from there all over the entire world. Therefore he's been called Saptam Goswami. First of all, looked at Tirtha Udhara. It was not clear where was the actual appearance place of Satyanandan Gohari. And worship was going on in another place. But Srila Bhaktivinoda Thakur, by his divine vision, he located the appearance place of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mayapur Dham, Yoga Pit, the house of Satyamata and Jagannath Mishra. And that was also endorsed and certified by, at that time, Vaishnava Sarvaboma, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. In addition, Srila Bhaktivinoda Thakur compiled his Navadvip Dham Mahatmya, in which he explained the sarup of Navadvip Dham and the glories of each place and the pastimes, the places and pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all incarnations and their associates in Navadvip Dham. And in his Praman Kanda, he supported all of his statements with evidence from all the various Shastras. And furthermore, he revealed the glories of Navadvip Dham in his Navadvip Dham Bhava Taranga. So, in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur, he did the Lupta Tirtha Udhara. Once when he was going to Vrindavan, on the way, he stayed in the place of Tarakeshwar Mahadev. And in the night time, Tarakeshwar Mahadev, Lord Shiva, came to him in a dream and said, "You are going to Vrindavan, but there is so much work for you to do in Navadvip Dham, manifesting Mahaprabhu's holy Dham." So, on the inspiration of Mahadev himself, Srila Bhaktivinoda Thakur, he took up residence in Godrum Dwip, in Surabhi Kunj, Swananda Sukhada Kunj, and from there he began to manifest the glories of Navadvip Dham. Then, Vigraha Prakash, when Srila Bhaktivinoda Thakur was excavating the yoga pit, at that time he discovered the adopted Vishnu Murti, which was worshipped by Sri Jagannath Mishra. Srila Bhaktivinoda Thakur, he did Vaishnav Sadat Achar Stapana, established proper behavior. Why? He instructed his son, Srila Bhakti Siddhanta Sazari Thakur, Jagat Guru Srila Prabhupada, to establish Daivi Varnashram. Unless the living entities follow very carefully the religious orders of life, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas, then there's no platform on which they can gradually enter into pure bhakti. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he was like the architect who made the plan how Krishna consciousness could be spread all over the world. And his son, Srila Bhakti Siddhanta Sazari Thakur, was like the contractor who actually manifested all the plans and the vision of Srila Bhaktivinoda Thakur throughout the whole world. Also, Srila Bhaktivinoda Thakur, he discovered the Sat-Kriya Deepika and the Sanskar Deepika of Sri Gopal Bhatta Goswami and published this to show what is proper sadhachar behavior for the Vaishnavas in various ashrams. And there also is the injunction how those in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, by what ceremony and by what regulations they should accept the sannyas ashram. Srila Bhaktivinoda Thakur also did Bhakti Granta Pranayam. He manifested the Bhakti Granthas. More than 100 books he wrote. He established the Sajjan Toshani magazine also. And he manifested so many books such as Sri Harinam Chintamani. In Jaiva Dharma, he gave all Dasmul Shiksha, the entire teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the essence of Srila Jiva Goswami's Satsandarbhas in only one verse, in the most loka of Dasmul Shiksha. And then also he explained. And in Jaiva Dharma, he showed the complete path of pure bhakti from the lowest platform, from the platform of those who are Mayavadi, those who are following Islam, the Dharma of the Muslims, from all points of view, beginning from that point, gradually entering into Shraddha, Nishtha, Ruchi, Asakti, up to Swarup Siddhi. There he explained all the Shuddha Bhajan Pranali of those who are Rupanuga Vaishnavas, and also up to the point of Vastu Siddhi. So from beginning to end of our spiritual life, Srila Bhaktivinoda Thakur clarified and explained everything. But in Jaiva Dharma, he has given general explanation. And in his Bhajan Rahasya, he has revealed specifically how he himself would practice Bhajan, what verses he would meditate upon, and in what way he would deeply absorb himself in the nectar of Harinam. There he revealed the confidential meaning of the Maha Mantra. There he revealed the confidential meaning of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Shikshastaka. Srila Bhaktivinoda Thakur also commented on Sri Upadeshamrita, Srila Raghunath Das Goswami's Manasiksha, on the Shikshastaka of Sri Chaitanya Mahaprabhu, on the complete Sri Chaitanya Charitamrita in his Amrita Prabaha Vasya. And in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur, he did Bhakti Granta Pranayam, manifesting the devotional scriptures. Srila Gurudev once said, he said that when I begin to glorify Srila Bhaktivinoda Thakur, at that time my heart becomes full of joy as if I were glorifying Srila Rupa Goswami Pad himself. So, Rupanuga Varayate, in the modern age, he is the permanent representative of Srila Rupa Goswami Pad, and he's manifested his pure conception. Srila Bhaktivinoda Thakur was very, very humble. He said, Barasuke Kabul Gai, Surabhi Kunjeti Nama Hakkolechi Kodnitai. Sri Nityananda Prabhu has opened the marketplace of the holy name in Surabhi Kunj, and he's giving Krishna Prema to one and all without considering their education, their caste, their wealth, their strength, their qualification. Only one consideration. What is that? Shraddha. Shraddha Mulye, Shuddha Naam Se Hatete Vikai. He's distributing Shuddha Naam for the price of your faith. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he said, oh, Ama Sange Chalo Majanera Kache Jai. Come with me. I'm taking you to the lotus feet of Nityananda Prabhu, and there you receive his mercy. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, in that marketplace of the holy name, what is my position? I am the sweeper. The sweeper in the marketplace of the holy name. Why? Because if you go anywhere, there may be some stone chips, sharp grass, some thorns or anything, but the sweeper will remove everything so that your path to the destination is very clear and very easy. So Srila Bhaktivinoda Thakur, in his humility, he has rendered this service of being the sweeper in the marketplace of the holy name, so that all the living entities very smoothly and easily can come to the Akanda Guru Tattva, Sri Nityananda Prabhu, and receive empowerment. Ekbar dekhe chakshe jal, gora bale nitai dena shokala sambal. If Nityananda Prabhu sees a tear coming in the eye of anyone when they chant the name of Gorchandra, that time Nityananda Prabhu is giving all power to them. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur, he advertised the mercy of Nityananda Prabhu so that all could come to his lotus feet and make the path very, very clear. But who is Srila Bhaktivinoda Thakur? He revealed himself in his own kirtans that Varana Tarit Basa Taravali Kamala Manjari Nam Sari Garibasha Vyasa Satata Sari Garibasha Vyasa Satata Swananda Sukhada Dham Kapura Seva Lalita Gani Gan Radha Yuta Shri Nam. Oh, my complexion is shining like lightning. My cloth is decorated with stars. I am eternally 12 and a half years old. And my name is Kamala Manjari. My eternal place of service is Swananda Sukhada Kunj of Ananga Manjari in the middle of Radha Kunj. My gun is Lalita Gun, and my Yutashri is Shrimati Radhika. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote so many songs from the beginning of spiritual life. What is the doorway into pure bhakti? First thing, Sharanagati. Without Sharanagati, then Shuddha Bhakti can never begin. But what is the mood of Sharanagati? The living entities cannot understand. So in many, many songs, Srila Bhaktivinoda Thakur explained the internal moods of Sharanagati so that the jivas, the aspiring sadhaks, could sing them every day and gradually become established in all the bhavs of Sharanagati, which when six moods of Sharanagati are compiled together in the heart, becomes paramartik shraddha, actual transcendental faith, by which one can begin his bhajan, his real sadhan bhajan. Srila Bhaktivinoda Thakur also took the essence of all the writings of the Goswamis. He has written, though our Goswamis have written in Sanskrit, and it's very difficult to understand Sanskrit, and also the verses of Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nila Mani, Stavamala, and others, being in Sanskrit, they're open to various different types of interpretation and misinterpretation. But Srila Bhaktivinoda Thakur, in very simple Bengali language, he explained all of these things. He has given the complete overview of Bhakti Rasamrita Sindhu, where in the Gita Mala, overview of Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjvala Nilamani, he has written in his various sun books, Kalyana Kalpataru, Sharanagati, Gita Mala, another one. There, he has written the explaining the moods, one song for each verse of Shikshastaka, one song for each verse of Manasiksha, one song for each verse of Upadeshamrita. He's written one song describing Rupa Goswami's inner moods for each verse of Sri Namastakam. And he's taken the essence of Goswami's writings. For example, in Stavavali, Raghunath Das Goswami has written Anuradhi Radha Padamboja Renam Anashritit Vrindatali Tadpatankam Asambhasya Tadbhava Gavirachitam Kuta Shama Sindhu Rasasya Avagaha. And Srila Bhaktivinoda Thakur, in simple language, in sung version, he's written Radhika Charana Padma Sokala Sriya Sadma Kemani Se Shamananda Rasasrinda Snanananda. All of these things. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur extracted the very essence of all the writings of the Goswamis and made it accessible to the ordinary living entities. If they will only read, they cannot appreciate. But by singing the kirtans, yadyapi kalo yadyapi anya kalo bhakti kartavya tadas kirtana kya bhakti sanyoga naiva. Though in the age of Kali, all the angas of bhakti can be performed, but without sankirtana, then you cannot become perfect. So Srila Bhaktivinoda Thakur, through the medium of so many kirtans, he infused all the jivas and caused them to have complete avesh, complete absorption in the vichadara of Rupa and Raghunath Sanatan Goswami and all of our Guru Vargas. So in this way, I have for my Sharda Pushpanjali. Actually, I have no flowers, but whatever flowers I've heard, description I've heard from the lotus lips of Srila Gurudev, and offering this at the lotus feet of Srila Bhaktivinoda Thakur.
पतितानां पामरिन्दु वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तवै वास्मि तवै वास्मि न जीवां प्रयामि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद गौर शक्ति बहुत सुंदर व्याख्या महाराज ने और अरंज महाराज ने बहुत सुंदर विवेचना के साथ में उनके जीवन चरित्र की एक झांकी प्रस्तुत की। संक्षेप में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, सब यही समझिए संक्षेप में। भक्ति विनोद ठाकुर गौरशंकर के पदकर हैं और राधा कृष्ण के भी पदकर हैं। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में महाप्रभु के पदकर हैं और कमल मंजरी के रूप में कृष्ण। इन्होंने जगत में जो अवधान दिया वो प्रधानतः दो हैं, चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली को प्रकट करना या कराना, इंग्लैंड से इंडिया और इंडियन लाइब्रेरी से उन्होंने यहाँ का मैप और जितने प्रमाण सब उद्धृत करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा जन्मभूमि का निर्देश किया और वहीं पर आठ से अल्लाह घर करके और गौर विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया जी का भजन पंचतत्व का भजन आरम्भ किया। वहाँ की जमींदारी स्टेट भी देगी और प्रभुपाद के प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त और दूसरा भक्ति सिद्धांत को प्रकट किया। उन्हीं के पुत्र के रूप में शिष्य के रूप में ये श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी, यद्यपि गौर किशोरदास पावेद जी महाराज इनके दीक्षा गुरु हैं तो भी भक्तिविनोद ठाकुर ने ही सारी शिक्षा इत्यादि नित्य मुक्त जीव हैं, नित्य मुक्त महापुरुष हैं तो भी लौकिक लीला में जो कुछ इनको मिला वो भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से ही मिला। यदि श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो भक्ति विनोद ठाकुर की सब पुस्तकें लिखी हुई धरी रह जाती। इन्होंने प्रचार करके विश्व में भक्ति विनोद ठाकुर की धारा का प्रचार किया, जैसा कि इन लोगों ने बताया सर्व सहज शब्दों में बंगाली भाषा में कठिन कठिन रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि के विचारों को, जो जीव गोस्वामी के विचारों को प्रकट किया सर्व सहज शब्द। मैंने सीखा कि एक एक श्लोक को उन्होंने कल्याण कल्पतरु ये सब चीजें उनकी अनुभूति और उससे शरणागति, शरणागति में विभिन्न आचार्यों विशेष करके जामनाचार्य इत्यादि के पद्यों को धारण किया है सर्वसाधारण। उन्होंने वेदांत का एक भाष्य भी सर्वसहज बंगला इसमें किया किंतु आजकल वो प्राप्त नहीं है। उनके बहुत से ग्रंथ थे किंतु धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, घर के कोने में ही दीमक ने उनको काट खाया और वो सब नष्ट हो गए। वहां जो रहते तो जगत का और भी मंगल होता। इस प्रकार से गीति माला कल्याण कल्प तरु नवदीप भाव तरंग, नवदीप भाव तरंग और नवदीप धाम परिक्रमा सर्व सहज में ऐसा की कि आज लाखों कोटि लोग गौर मंडल की परिक्रमा करते, ये महापुरुष नहीं होते और स्वयं नहीं करते तो पहले की परिक्रमा शिवास श्रीनिवास जी नरोत्तम और वो जो परिक्रमा की थी नित्यानंद प्रभु जी ने कराई थी जीव गोस्वामी को, इसके बाद में इस महापुरुष ने ही ये सब प्रचलन किया। इस तरह से इनके चरणों में हम सबके तरफ से पुष्पांजलि प्रदान करते हैं कि ये शुद्ध भक्ति की जो गंगा को ले आए हैं उसमें हम लोग अवदान करते हैं। 8:07 बजे का